प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने ऑस्ट्रेलियाई जनता से आग्रह किया है कि वे यूक्रेन में चल रहे सशस्त्र तनाव में भागीदारी ना करें। यूक्रेनियाई राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने विश्व भर के नागरिकों को यूक्रेन के साथ रूस के विरुद्ध लड़ने के लिए आमंत्रित किया है। कैनबरा स्थित यूक्रेनियाई दूतावास ने इस बात की पुष्टि की है कि उन्हें करीब 20 फोन आए हैं जहाँ उनसे यूक्रेनियाई राष्ट्रपति के इस कॉल की प्रतिक्रिया देने के बारे में पूछताछ की गई है।
No one's calling anyone names, all right?
You don't know.
I do
you
know.
You don't know.
I do know. Police, can we please remove this person?
You don't know. And here,
Russian fascist.
Please,
Russian fascist.
Stop. Police, we need your help here.
पूर्वी यूरोप में बढ़ रहे तनाव सिडनी की सड़कों पर भी विस्तार पा रहे हैं, जहां ऑस्ट्रेलियाई यूक्रेनियाई लोग अपनी गृह भूमि के समर्थन में उतरते नजर आए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने विश्व नागरिकों से यूक्रेन के समर्थन में लड़ने का आग्रह किया है। जहां इस आग्रह को सहानुभूति की निगाहों से देखा जा रहा है, वहीं ऑस्ट्रेलियाई सरकार नागरिकों को सलाह दे रही है कि वे इस लड़ाई में हिस्सा ना लें। वे लोग जो इस कॉल का समर्थन करने का मन बना रहे हैं, उनके लिए विदेश मंत्री मैरी स्पेन ने एक कड़ा संदेश दिया है।
ऑस्ट्रेलियाज़ एडवाइस फॉर ट्रैवलिंग टू यूक्रेन इज डू नॉट ट्रैवल। Do not travel. That is clear. We are aware of the potential for Australians who may seek to do that, though, to travel to Ukraine, and we will continue to monitor that. But Australian law, existing Australian law, prohibits Australian citizens and residents and holders of Australian visas from engaging in hostile activities overseas unless serving in the armed forces of a foreign country.
प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने इस लड़ाई में हिस्सा लेने वाले लोगों को कानूनी अनिश्चितता के बारे में भी चेताया है।
Well, this is a complicated situation, and at present it is still somewhat unclear what the president of Ukraine has proposed. Our law sets out arrangements where people can be involved in official activity by a sovereign state. Which Ukraine obviously qualifies for, but the nature of these arrangements are very uncertain.
उन्होंने विदेश मंत्री के उस संदेश को दोहराया है जहां सुश्री पेन ने ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को यूक्रेन यात्रा ना करने की सलाह दी है।
I would counsel against making assumptions about the legality of such activity at this point, given the uncertainties that are associated with the arrangements and the force that the president of Ukraine, Zelensky, is putting in place.
ऑस्ट्रेलिया का कानून किसी को भी विदेशी टकरावों में हिस्सा लेने से निषिद्ध करता है। इस कानून का अपवाद केवल उन मामलों में आता है जब आप राज्य के अंतर्गत सैन्य मुहिम पर जा रहे हों। चार्ल्स स्टुअर्ट यूनिवर्सिटी के टेररिज्म स्टडीज के निदेशक लेवाई वेस्ट का कहना है कि ये कानून साफ साफ तौर पर कुछ भी नहीं कहता।
As a result of the Azov battalion technically being attached to or a component of the Ukrainian military, it means that traveling to the Ukraine to participate in conflict is not equivalent to a foreign incursion offence. That doesn't mean that the state has no means at its disposal. We have stopped at least one individual publicly from traveling to the Ukraine, had their passport cancelled. So there are ways to prevent people from going to Ukraine to participate. But technically that means that you're fighting for a state rather than against a state, and that is legal.
उनका कहना है कि उनकी चिंता ये है कि जब इस लड़ाई में हिस्सा लेने वाले ऑस्ट्रेलियाई घर लौटेंगे तब तक वे कट्टरवादी हो जाएंगे और ऑस्ट्रेलिया की ही सुरक्षा को खतरा बन जाएंगे।
The risk is that people go over there. They are, in the first instance, harden their ideological commitment because they wind up in an isolated, remote from anyone else, so only surrounded by fellow travellers. But more substantially is that they gain additional training and battle experience, so they become more capable at undertaking and prosecuting violence.
राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का कॉल ऑस्ट्रेलिया में साफ साफ सुना गया है। कैनबरा स्थित यूक्रेनियाई दूतावास को मंगलवार से अब तक कम से कम 20 ऐसे फोन कॉल आ चुके हैं जिनमें लोग इस लड़ाई में शामिल होने की इच्छा जता रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम की विदेश सचिव ने कहा है कि वे उन ब्रितानियों का समर्थन करेंगी जो इस लड़ाई का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री की इस मामले में दूसरी सोच है।
Australians who travel to fight in Ukraine with a non-government armed group on either side of the conflict, or who recruit someone else to do so, may be committing a criminal offence. So I think it is very important for individuals who may seek to do this to be clear of the provisions of Australian laws that may apply to their activity. And frankly, I would strongly encourage them to observe the travel advice, which is do not travel.
लेबर विदेश प्रवक्ता पेनी वॉन्ग का कहना है कि इस मामले में वे सरकारी सलाह के साथ हैं।
Whatever the legal situation is, the clear advice from the Department of Foreign Affairs, which again is supported today both by the Prime Minister and also by Ukrainian representatives here in Australia, is to discourage people from travel. And I would urge Australians to respect that advice. I understand this is a very difficult situation. I understand many Australians have families who are experiencing the sort of conflict we have seen. And that is very distressing, but I would encourage people to follow the advice of government.
सरकार ने लोगों को रूस यात्रा ना करने की भी सलाह दी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनके करीबियों पर लगे ऑस्ट्रेलियाई प्रतिबंध अब लागू हो गए हैं। बिल ब्राउडर मैग्निट्स्की ग्लोबल जस्टिस कैंपेन के मुखिया हैं। ऐसे कानूनों के अभिवक्ता ब्राउडर ने इन प्रतिबंधों का स्वागत किया है।
The most important thing that everybody can be doing is providing assistance to Ukraine in fighting off this invader, whether that's in the form of military equipment, medical supplies, financial aid, or of course financial sanctions. We're in a very dangerous situation where things could get a lot worse. And most importantly, Vladimir Putin isn't going to stop with Ukraine. He'll move on to NATO countries, and so it's crucial that we all pitch in and do whatever we can to stop him where he is and not escalate to the point where we're in a West versus Russia war later on.
और ऑस्ट्रेलिया के लिए यूरोपीय संघ के राजदूत माइकल पुल्च ने इस तनाव को अहिंसक रूप से सुलझाने का आग्रह किया है।
Every country has to contribute to what we can to make it sure that Russia understands it's the world community that speaks here, and Australia does its bit.
SBS News से आर्याना लुसेंट और पाब्लो बनालेस की इस खबर को SBS हिंदी से आपके लिए प्रस्तुत किया है वृषाली जैन ने।